آگے کچھ مخلوقات کے رزق کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَعِيَ مِنْ دَابَّةِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا میسیج ہے, رزق کی فکر نہ کرو. حیرت کی بات ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے ان کو فکر بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. چار دن میاں جاب سے لے آف ہو جائیں, ایسے لگتا ہے کہ بس اب تو روٹی بھی نہیں ملتی. جب سے پیدا ہوئے آج تک ابھی بھوکے سوئے, اللہ تو ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا تھا. تو یاد رکھیے یہ ریسورسز ہیں, اسباب ہیں, رزق اللہ دیتا ہے. جانوروں کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو. صبح کو بھوکے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور چونچ میں اپنے بچوں کے لیے دانا بھی لے کر آتے ہیں. تو ہم نے رزق کی فکر میں اپنے حقیقی رزق کو بھلا دیا جو ہماری روح کی غذا تھی. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو وہ ضرور کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں, اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کیا, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے, کہو الحمدللہ. مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس رزق والی آیت میں میرے آپ کے لیے کس بات کا اشارہ ہے؟ اشارہ ہے اس بات کا کہ رزق میں لہو الحدیث شامل نہ کرو. بعض دفعہ ہمارے کوئی برادر محنت کرتے ہیں, ہر وہ چیز ہے جس میں کوئی قباحت نہیں, کوئی ایک چیز ہوتی ہے کاروبار میں, مثلا شراب, لوٹو, جوا, گیمبلنگ, کچھ فیو پرسنٹ انٹرسٹ کا ریٹشو, دھوکہ, بس اس کو نکال دیں. آج اس پارے کے اندر ہم نے پیچھے لگ جانا ہے اپنی زندگی کے فوہش اور لغویات سے, اور لغویات کو بیچ کر کبھی رزق آ سکتا. ایک بیٹا تھا کسی کا, تو کام ایسے ہی تھا کچھ جس میں ہر وہ چیز تھی جو فحش اور منکر میں آتی ہے. تو ماں کہتی تھی بیٹا میں تیری دعا کیا کروں کہ تیرا رزق بڑھے, یعنی شراب پی کے تیری اور لوگ اس کو پی کے گل گپاڑے کریں, تیری فلمیں بکیں, تیری کیسٹیں بکیں, تیری موویاں بکیں, میں تیرے لیے کیا دعا کروں. تو اس آیت پہ یہ اشارہ لے لیجئے, آپ کا میرا فرض بنتا ہے. ہمارے شوہر ہماری بہت سنتے ہیں, نہیں سنیں گے تو سنائیں گے, بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں, اس پہ نو کمپرومائز. جو کمائی میں لہو آ جائے گا اور فحش آ جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی. آزما کے دیکھ لیجئے, گھر سے بیماری نہیں جائے گی, گھر میں جھگڑا ضرور رہے گا, اولاد نافرمان ہوگی. $10,000 آئے گا مہینے کا آپ کے گھر میں, برکت $2,000 کی بھی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو اس سے پاک کر دے, اور نہیں کرتے تو یاد رکھنا کتنے دن جیو گے. وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب, اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے, کاش یہ لوگ جانتے. 3 سیکنڈ غور کیجئے, اگر آج نہیں بھی اللہ کی ناپسند کی چیزوں کو نکالا تو آگے جا کے کیا ہوگا, ہر ایک اس پہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس میں یہ پیغام رکھا ہے کہ دنیا کے دھوکوں میں نہ پڑو. کسی کا کال بڑا اچھا لگا, کہا اگر دینار تمہارے لیے باقی رہے بھی لیکن تم ان کے لیے باقی نہیں رہو گے. کتنی نوٹوں کی گڈیاں چھوڑ کر دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور ان اولادوں کے ہاتھوں میں دے جاتے ہیں جن کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ اس کا اصل استعمال کیا ہے. پھر وہ فحش اور منکر پہ استعمال نہیں کریں گے تو اور کدھر کریں گے؟ پھر وہ مال مفت دل بے رحم والی کیفیت میں نہیں کریں گے تو اور کدھر کریں گے؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا اس کے لیے ایک نشانی ہے یا ایک مثال ہے. کیسے؟ کتنا ہی مزے کا کیوں نہ ہو, یہ سوچو اس کا انجام کیا ہے. کھانے کے تو بہت ٹیسٹ ہیں, بات تو گندی ہے, ٹوائلٹ کے تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. बल्कि जितना भारी लजीज खाना खाया होगा उतनी हाजत रवी मुश्किल होगी, पेट में बल उठेंगे, मिर्चें लगेंगी, चुभन होगी। ये है दुनिया। असल अकलमंद वो है जो इंजाम को सामने रख कर जिए। काश ये जानते। देखिए यहाँ फिर इल्म की बात है। फैजारा की वो फिलफुल की, जब ये कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इससे दुआ मांगते हैं, फिर जब वो इन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर इसका कुफरान नेमत करें, यानी अल्लाह ने जीने की और मोहलत दी ताकि और गुनाह कर लें, और हयाते दुनिया के मज़े लूटें। अच्छान करीब इनको मालूम हो जाएगा, क्या ये देखते नहीं कि हमने एक पुरमन हरम बना दिया, हालांकि इसके गिर्दो पेश लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं? तो वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबा, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े या हक को जुटलाए जबकि वो इसके सामने आ चुका हो? कैसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम ही नहीं? तो खूबसूरत आयत, पहली आयत भी याद कीजिए, अहसिबन्ना से युतरको यकूल आमन्ना, क्या लोगों ने यह सोच लिया कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश ना होगी? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे इन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे। कैसे? नेकियों के रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकुकारों ही के साथ है। बहुत ही खूबसूरत आयत है, पीछे भी हमने बात की थी मुजाहिदे की। हकीकत यह है कि एक मोमिन की सारी जिंदगी जिहाद की जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो हमें बात समझ आती है, फरमाया कि एक शख्स सारी जिंदगी जिहाद करता रहता है चाहे उसने एक बार भी तलवार या तीर ना उठाया हो। तो जिहाद कैसे? नफ्स से जिहाद, दीन के दिफा का जिहाद, बातिल परस्तों से जिहाद, जालिमों को जुल्म से रोकने का जिहाद, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तो जिहाद की पीक है क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल काम है कि लोगों की बुराइयों को छुड़वाना, फिर इसी तरह अपने गुस्से पे काबू पाने का जिहाद, फिर इसी तरह से नींद से जिहाद करके बैठते हैं लोग जो फजर के वक्त बैठे होते हैं। यूएसए कनाडा में इस वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग है और हमारे जो साथी बैठे हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपको इस मुजाहिदे का बड़ा प्यारा अजर दे क्योंकि आपने अपनी नींद अल्लाह के लिए छोड़ी। फिर आप देखिए अल्लाह की इताअत और इबादत में मेहनत करने का जिहाद, और फिर दसवां जिहाद माल को अल्लाह के रास्ते में लगाने का जिहाद। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिद वो है जो इताअत में अपने नफ्स को लगाने में मेहनत कर रहा है। और मैं इसमें अक्सर उन लोगों को लेती हूँ जो नए नए कुरान सुनते हैं, हाय ये भी गलत, हाय मेरी ये भी चीज़ ठीक नहीं, हाय मैं ये भी ठीक नहीं करती, हाय क्या होगा क्या होगा। अल्लाह कहते हैं डोंट वरी, तुम करते रहो। देखिए एक है जहादा, मेहनत है, और जहादा क्या है? अटमोस्ट कोशिश, बहुत बड़ी मेहनत। अल्लाह की पसंद का बनना आसान काम नहीं है क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाहा लमाल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनों के साथ है। क्या पता चला? मोहसिन बनना है, अल्लाह की पसंद का बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मोहसिन कौन होता है? कि जो अल्लाह की राह में थके और शिकवे ना करे। शिकवे करके हम एहसान के दर्जे से नीचे हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे सही मानों में मुजाहिदों की तौफीक दे। और याद रखिए अल्लाह के नबी के दौर के सहाबा ने यही किया था, सूरत के शुरू में भी यही पैगाम था। हालांकि मुश्किलें सह रहे थे, पेटों पे पत्थर बंधे थे और डांट पड़ गई, क्या सोचते हो कलमा पढ़ के बख्शे जाओगे? पहले सहाबा को डांटा और बाद में फिर दूसरों को डांटा। तो याद रखिए जिसने भी कुछ करना है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। किसान बीज हाथ में रख ले, उगेगा? शीशे के खूबसूरत से वॉज के अंदर बीज डाल दीजिए, उगेंगे? हाथों में पड़े हुए बीज नहीं उगते हैं। इसी तरह बंद मुट्ठियों से जन्नत नहीं मिलती, इसके लिए जमीन खोद कर उसके अंदर डालना पड़ेगा। ये है मुजाहिदा। दीन के नाम पर पहली पहली कोशिशें मुजाहिदा होती हैं क्योंकि गोडी भी करनी पड़ती है, अभी तो है ही कुछ नहीं मुवाफिक। एक होते फसल लग गई, चल पड़ा मौसम, चल पड़ी हवाएं, चली पता है कब बीज लगना है, कब काटना है, कब पानी देना है। एक है पता ही कोई नहीं है, जमीन पहले ढूंढनी है, फिर बीज ढूंढना है, फिर मैचिंग करनी है, फिर पानी लगाना है, फिर कीड़े मकोड़ों से बचाना है। ये मुजाहिदे सहाबा कर गए, इसलिए उनकी इज्जतें थी। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे आपको आज इसी तरह रखे। और जब अल्लाह से मिलने का यकीन होता है ना, मैं तो इस पूरी सूरत को पढ़ते हुए उदास हो जाती हूँ हमेशा। सूरत अनकबूत के नाम के साथ मेरे दिल पे उदासी आती है। हमने तो आज इस्लाम का वो दौर देखा ही नहीं, और जो है वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मोहसिन बना, हमारे कामों के घटियापन को ना देख, हमारे एरर्स को ना देख, हमारी कमी कोताहियों को ना देख, बस तू अपनी रहमत से हमें बेहतरीन तरीके से इस काम को करने वाला बना। तो ये थी सूरत अलनकबूत, जिसने आपको मुझे क्या पैगाम दिया कि इम्तिहान के डर से भागिए नहीं, कोशिशें करते रहें। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को देखेगा, आपके हालात को देखता है। दूसरी चीज़ इस सूरत से हमने सीखी है कि जितना इल्म उतना इम्तिहान, थोड़े इल्म से थोड़े इम्तिहान, ज़्यादा इल्म से ज़्यादा इम्तिहान। तीसरी चीज़ सीखी, कमज़ोर ईमान के साथ छोटे इम्तिहान आते हैं, मजबूत ईमान के साथ बड़े इम्तिहान आते हैं। जो आजमाइशें सहाबा की आई, अगर आज के मुसलमान की आएँ अमूमी तौर पे, तो वो कब से इस्लाम को खैरबाद कह चुके होते। और अगली चीज़ सीखी कि इम्तिहान हमें पुख्ता करने के लिए आते हैं, हमारा मुजाहिदा अल्लाह देखना चाहता है। और याद रखिए ये जो बात की ना कि इन्नल्लाह ला मा, ला अलबत्ता मा साथ, माइयत का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं। ये माइयत कब मिलती है? जब आप मोहसिन बनने की कोशिशें करते हैं। बस दफ़ा उम्मीद कहीं से होती है। आपने कभी इम्तिहान दिया होगा, आप कहते हैं ये सवाल आएंगे, वो नहीं आते, वो सवाल आ जाते जो कभी सोचे ही नहीं होते। इसी तरह याद रखें, अल्लाह के रास्तों में हमें उम्मीद कहीं और से होती है और इम्तिहान कहीं और से पड़ जाता है। वो बंदा भी बोल उठता है जो सारी ज़िंदगी ना बोला। और बाज़ दफ़ा मदद की उम्मीद किसी और से होती है और अल्लाह छप्पर फाड़ के किसी दूसरे से दीन के काम ले लेता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बस आपको मुझे रुसवा ना करें। आइए इन आयतों की तिलावत सुनते हैं, आयत 64 से।
वमा हाज़िही अल-हयातु अद-दुनिया इल्ला लहू वलअब इल्ला लहू वलअब وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
كتني خوبصورة بات ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. شاید اسی پہ کسی نے وہ اشعار بھی کہے ہوں گے نا کہ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں. دیکھیے جو کسی کے گھر کا راستہ ڈھونڈتا ہے بالآخر مل ہی جاتا ہے. آپ نے میں نے اگر یقین کے ساتھ ایک دن الصراط المستقیم کی دعا کی ہے نا تو اللہ آپ کو مجھے راستے دکھائے گا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا. ضرورت یہ ہے کہ راستہ پوچھنے کے بعد پھر اس راستے پہ چلنے بھی تو لگے, اور راستے کی مشکلوں کو دیکھ کر گھبرائے نہ, جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری. और मैं इस सूरत पे फिर एक दो जुमले बोल देती हूँ कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद ही तो सारी मसले आते हैं। आप देखिए कि नबियों की जो कौमें थी ना, उनको खूब पता था कि जुबान से ला इलाहा पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह का असर तो हमारी जिंदगियों पर पड़ेगा, हमारी तिजारत पर पड़ेगा, हमारी खुशी गमी पर पड़ेगा। खाली ला इलाहा पढ़ना होता 1 लाख दफा पढ़ लेते। तो ये चीज आपको मुझे अपनी नजर में रखनी है कि जब तक आप और मैं इस कलमे के तकाजे पूरे नहीं करेंगे, और वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना के मिस्ताक नहीं बनेंगे, हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए अमल के रास्ते आसान कर दे।